नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल
और मैं हूँ सोनू।
जैसा पिछले 2-3 एपिसोड से हमने बहुत सारे ऐसे किस्से बताए हमारी ज़िंदगी के, जो कि हो सकता है लोगों के लिए कुछ काम के भी हो सकते हैं, उन्हीं में से एक और किस्सा लेके आज सोनू आने वाली है कि सोनू बताएगी कि क्या हुआ था उसके साथ एग्जैक्टली।
सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का रिस्पांस मिला, बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारा मेन मकसद यही था कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो।
अगर होती भी है तो कम से कम थोड़ी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आज कौन सा किस्सा शेयर करने वाली हो तुम?
आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत अलग है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था कुछ ऐसी चीज़। तो मुझे लगता है मेरी ये घटना सुन के आप लोगों को शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, समझ में आ जाएगी लोग किस किस तरीके से क्या क्या करते हैं।
इस घटना में डायरेक्टली तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं भी था दूर से, तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है इसमें, जो कि मैंने डिसीजन लिया था उसके बारे में मैं बताऊँगा इस पूरी घटना को सुनने के बाद कि मैंने वो डिसीजन क्यों लिया था।
तो हुआ ये था कि अर्नव था 2-2.5 साल का, तो मैं उसको गोदी में लेके अंधेरी में गई थी स्टेशन के पास, जहाँ से मुझे कूरियर करना था राखी मेरे भाई के लिए। राखी आने वाली थी, आई थिंक 10-15 दिन बाकी थे। मैंने स्वप्निल को बोला कि मैं राखी कूरियर करके आती हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ। तो अर्नव को लेकर मैं चली गई। अर्नव 2-2.5 साल का ही था तब। शाम के 5 या 6 बजे थे, मुझे अभी भी याद है, मैंने कूरियर किया राखी और बाहर आके स्वप्निल को कॉल किया। स्वप्निल कहीं क्लाइंट के पास गए हुए थे मीटिंग में, तो मैंने उनको बोला कि मैंने राखी कूरियर कर दी है, मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ, तुम कब तक आओगे? तो स्वप्निल ने बोला मुझे तो टाइम लगेगा, एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम एक काम करना, जब आओगे स्टेशन से तो कुछ खाने के लिए ले आना, मुझे भूख लगी है। तो मैंने बोला ठीक है मैं कुछ लेके आती हूँ। तो वहाँ पर मैकडोनल्ड भी है और सामने एक जम्बो वड़ा पाव का काउंटर था, तो मैंने सोचा वड़ा पाव पैक करवा लेती हूँ 2। तो वहाँ जाकर मैं क्यू में लग गई, काफ़ी भीड़ थी एक्चुअली स्टेशन पे, वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो मैं जाकर जब क्यू में लगी तो मेरे सामने 2 लोग थे और पीछे भी 2-3 लोग थे। फिर मैंने सोचा नंबर आने से पहले मैं पैसे निकाल लेती हूँ बैग से, क्योंकि अर्नव मेरी गोदी में था, तो मैंने सोचा मैं पहले ही हाथ में पैसे निकाल कर रखती हूँ। तो जैसे ही मैंने पैसे निकालने के लिए अपना बैग देखा तो बैग की जिप खुली हुई थी और मैं एकदम से घबरा गई, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं था उसमें। फिर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैंने सोचा यार फ़ोन अभी जस्ट मैंने स्वप्निल से बात करके रखा है और कहाँ चला गया। तो अर्नव मेरी गोदी में था और मुझे समझ में नहीं आया कि फ़ोन किसने निकाला है, क्या किया है, कुछ भी, मतलब एकदम से दिमाग वो होता ना बंद सा हो गया था मेरा, एकदम से घबरा गई थी मैं उस टाइम पे। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरे सामने एक लड़का खड़ा था और वो जाके साइड में दूसरी क्यू में जाके लग गया। तो मुझे आई डोंट नो मुझे क्या सूझा क्या हुआ, मुझे एक सेकंड के लिए ब्लैंक हुई और मैंने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। मैंने बोला तुम यहाँ खड़े थे ना? तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं खड़ा था। फिर वो लड़का पता नहीं घबराया क्या हुआ, उसके सामने 2 लड़कियाँ और आ गई, बोलती इसको क्यों पकड़ा है तुमने? मैंने बोला इसने मेरा फ़ोन निकाला है। तो बोलती नहीं नहीं इसने तुम्हारा फ़ोन नहीं निकाला। वो 2-3 लड़कियाँ थी एकदम से आगे आके खड़ी हो गई, लेकिन मैंने उस लड़के का कॉलर नहीं छोड़ा। मेरा जो फ़ोन था वो सैमसंग का था, बहुत बड़ा था साइज़ में, तो शायद वो रख नहीं पाया होगा जल्दबाजी में, तो उसने एक हाथ से अपने पीछे के साइड उसको छुपाया हुआ था, अपने हाथ को उसने पीछे रखा हुआ था ऐसे छुपा के फ़ोन को। तो मुझे डाउट हुआ, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो उसने ना फ़ोन गिरा दिया नीचे पीछे से। फिर मैंने अर्नव को नीचे खड़ा किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था, उसने जो चोरी किया मेरा फ़ोन और मुझे मिल भी गया, उसने नीचे छोड़ा ना, मैंने फ़ोन उठाया एक हाथ से और उसको पकड़े रखा, मैंने चिल्लाना चालू कर दिया। वहाँ क्या है, अंधेरी स्टेशन पे पुलिस भी बैठी रहती है, तो वो पास में ही थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। तो वहाँ से एक पुलिस वाला आया मेरी आवाज़ वगैरह सुन के कि क्या हो गया मैडम, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने बोला इसने मेरा फ़ोन चोरी किया है। तो वो जो लड़कियाँ थी ना बीच बीच में आ रही थी उस लड़के को बचाने के लिए, वो गायब हो गई जैसे ही वो पुलिस वाला आया। तो उस लड़के को तो मैंने छोड़ा नहीं था, क्योंकि मैंने ज़ोर से कस के पकड़ा हुआ था उसको कॉलर से। तो चारों तरफ काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई थी, क्योंकि मैं जब चिल्ला रही थी उसको मारा वारा मैंने, तो होता ही है ना लोग इकट्ठा हो जाते कि क्या हो गया क्या हो गया। फिर वो पुलिस वाला बोलता हुआ क्या मैडम बताओ तो मुझे। मैंने बोला इसने मेरा फ़ोन चोरी किया है। वो लड़का बोलता नहीं नहीं मैंने कोई फ़ोन चोरी नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई फ़ोन चोरी नहीं किया है, ऐसा मतलब चालू हो गया वो। फिर मैंने बोला नहीं इसने मेरा फ़ोन चोरी किया, इसके साथ में 2 और लड़कियाँ थी वो भी चली गई हैं। तो फिर मैंने बोला आप बाकी इन लोगों से पूछ लीजिए, ये लोग भी खड़े हुए थे यहीं पर। तो किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप थे। मैंने बोला बताओ आप लोगों ने देखा ना इसने अभी फ़ोन गिराया अपने हाथ से, ये मेरा फ़ोन है। तो कुछ नहीं, सब चुप थे। फिर मुझे गुस्सा तो बहुत आया लोगों पे, बट मैंने कुछ नहीं बोला। तो पुलिस वाले ने क्या किया, उस लड़के को पकड़ा और मुझे बोला मैडम आप आइए। तो मैं भी गई पीछे पीछे साथ में, तो स्टेशन के सामने गेट पर उनका जो चौकी रहती है वहाँ उसको लेके गया और उसको अंदर ले जाके उससे पूछताछ की, पहले तो उसकी तलाशी ली कि उसके पास क्या क्या सामान है। तो पुलिस वाले ने बताया, इसके पास तो कुछ भी नहीं है मैडम, ना तो कोई आईडी कार्ड है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है इसकी पॉकेट में, ना पैसे हैं। तो जब उससे पूछा कि तुम आए क्यों यहाँ पे, कहाँ से आए हो, तो उसने पता नहीं बहुत दूर कहीं मुलुंड या कहाँ से बोला कि मैं वहाँ से आया हूँ जूते या चप्पल खरीदने के लिए। तो फिर वो पुलिस वाले ने मारना चालू कर दिया उसको। तो एक्चुअली वो जो लड़का था वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 17 या 18 साल का। तो जब वो मार रहा था ना पुलिस वाला, मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों काफ़ी मारना शुरू कर दिया, और मैं वहीं सामने खड़ी होकर देख रही थी। तो एक रहता ही है ना, मैं नहीं देख पाती किसी को ऐसे मार खाते हुए। तो मैंने बोला प्लीज़ आप इसको मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए। तो पुलिस वाले ने बोला नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रहे हो, अगर आप छोड़ दोगे तो ये तो कल फिर चोरी करेगा, चलो आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दो। तो उन्होंने बोला आप हमारे साथ वैन में बैठो, यहाँ DN नगर पुलिस स्टेशन आपको चलना पड़ेगा। तो मैं समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं, तो मैंने सोचा कि स्वप्निल को एक बार कॉल कर लेती हूं। मैंने उनको बोला कि बस 2 मिनट दीजिए मुझे, और मैंने स्वप्निल को कॉल लगाया। स्वप्निल को सारी चीज़ें मैंने बताई, तो उन्होंने मुझे बोला यार तुम बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी।
तो जब मुझे फ़ोन आया, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसा हुआ था लोअर परेल के आसपास किसी जगह में, और मुझे अंधेरी पहुँचने में वहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था। तो सबसे पहले मैंने सोनू से पूछा कि यार फ़ोन चोरी हो गया, लेकिन तुम तो बात कर रही हो फ़ोन से। तो सोनू ने कहा कि अरे फ़ोन चोरी हो गया था, मिल भी गया, और चोर को भी पकड़ लिया मैंने, और पुलिस भी साथ में है, और मुझे बोल रहे हैं कि अभी चलो DN नगर पुलिस स्टेशन और इसकी कंप्लेंट लिखवाओ। तो ये सब जब मैंने सुना तो मुझे लगा पता नहीं अभी कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ रिपोर्ट लिखवाएगी, कैसे अरनो के साथ में जाएगी। तो मैंने कहा नहीं 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 ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फ़ोन मिल गया ना, तुम चुपचाप घर में जाओ और छोड़ दो उसको वहीं पर। मुझे लगा यार अभी इतना टाइम लगेगा मुझे पहुंचने में, 1-2 घंटा लगेगा, उसमें पता नहीं कहाँ जाएगी, कैसे रिपोर्ट लिखवाएगी, क्या होगा। और जब फ़ोन आपका गुम गया था और मिल गया तो फिर रिपोर्ट लिखवाने की क्या ज़रूरत है। बट सोनू ने कहा नहीं, वो पुलिस वाले बोल रहे हैं अभी कि आपको चलना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा।
स्वप्निल से बात होने के बाद मैंने पुलिस वालों को बताया कि मैं नहीं चल सकती, आप एक काम करिए इसको छोड़ दीजिए। तो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने उसको पकड़ के लाए थे मेरे साथ में, वो बहुत तेज़ मेरे पे चिल्लाने लगे। उन्होंने बोला मैम अगर आप अभी कंप्लेन नहीं करोगे इसकी तो ये फिर से चोरी करेगा, और आप जैसे लोग अगर जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कौन लेगा, ऐसे करके वो मेरे को बहुत तेज ऐसे गुस्सा करने लगे। तो मैंने बोला कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये बच्चा ये बड़ा नहीं है, मतलब जो लड़का था जिसने चोरी किया था, तो मुझे पता नहीं थोड़ी दया भी आ रही थी और मन भी नहीं हो रहा था कि मैं उसके लिए कुछ कंप्लेंट वगैरह लिखवाऊं। और फिर स्वप्निल ने भी बोल दिया, तो मुझे लगा कि नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने ना उसको दूर से ही, वो जो लड़का था उसको बोला कि दोबारा चोरी मत करना, और उसके बाद मैं घर के लिए निकल गई। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो पूरे टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्या मैंने सही किया या गलत किया, मुझे कंप्लेन करवानी चाहिए थी या नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन मन में ना एक था कि नहीं, वो छोटा था, कॉलेज में ही पढ़ता होगा आई थिंक वो लड़का, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कोई बात नहीं यार, वो शायद सबक सीखे इस बार और इससे सबक लेके आगे ऐसा ना करे।
तो ऐसा बहुत बार होता है जब आप किसी डिसीजन को लेने के लिए आपके दिमाग में होता है कि हो सकता है कि अगर आप कंप्लेन करते तो भी कुछ ना कुछ होता, लेकिन चलो आपका फ़ोन मिल गया था, और दूसरा वो परिस्थिति ऐसी नहीं थी उस समय। यानी मेरे प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूंगा तो मैं ये नहीं चाहता था कि सोनू उस झमेले में पड़े, क्योंकि क्या होता है जब आप पुलिस में एक बार कंप्लेन कर देते हो तो केवल कंप्लेन करना ही नहीं होता, बाद में जो भी पेशी होती है या बाद में जितने भी उसके प्रोसीजर होते हैं उसमें सब में जाना पड़ता है। और इतनी सारी चीज़ों में मैं नहीं चाहता था कि एक छोटी सी घटना को लेकर सोनू को हमेशा बार बार जाना पड़े। और उस समय स्पेसिफिक जो समय था उसमें अर्नव साथ में था और बहुत छोटा था, 2 साल का था आई थिंक। तो इस हिसाब से हमने वहाँ पर डिसीजन लिया था, आई डोंट नो वो सही था या नहीं था, लेकिन आज हमें लगता है कि यार जो भी डिसीजन लिया था आई थिंक सही था वो।
तो आप लोगों को क्या लगता है, हम लोगों ने सही किया या गलत किया, और अगर आप लोग हमारी जगह होते तो क्या करते, तो हमें ज़रूर बताइए अपना वॉइस मैसेज भेजकर Spotify पे, ताकि हम जान सके कि अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते।
तो सुनते रहिए हमारा द फैमिली पॉडकास्ट,
जहाँ पर हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, नया एपिसोड और हमारी लाइफ के नए नए किस्से। तो कल फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ, तो तब तक के लिए
बाय बाय,
टेक केयर।